हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत ने एक नज़र जबरदस्ती मुस्कुराते हुए वेदांत की तरफ देखा और फिर उन तीनों आदमियों को देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, पर हमने लव मैरिज की है। हमारी शादी अभी रजिस्टर नहीं है, तो हम सबूत नहीं दिखा सकते। ये सुनकर उनमें से एक आदमी की भौहें तन गईं और उसने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम दोनों हमसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। उस लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर अनंत। इतना बोलकर उसने पलकें उठाकर अनंत की तरफ देखा। अनंत का मन कर रहा था कि उस लड़की का सर फोड़ दे। कैसे वो उसे अपना पति बनाने पर तुल चुकी थी। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, चलो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस, अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो तुम दोनों को शादी रजिस्टर करनी पड़ेगी, और ये शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। उस लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम रजिस्ट्रार ऑफिस ही चलते हैं, शादी रजिस्टर करवा लेते हैं। इतना बोलकर वो लगभग खींचते हुए अनंत को आदमियों के पीछे पीछे जाने पर मजबूर कर रही थी। अनंत ने मुड़कर वेदांत की तरफ देखा, जो खुद परेशान था। वेदांत ने अनंत के साथ चलते हुए कहा, रजिस्ट्रेशन में घरवालों की परमिशन चाहिए होती है ना, चलो मैं घरवालों के रूप में चलता हूँ। उसे सच में लग रहा था कि अनंत ने घरवालों के डर से शायद लव मैरिज कर ली थी, क्योंकि उसकी फैमिली में ज्यादातर अरेंज मैरिज ही होती थी, और जिसकी भी लव मैरिज होती थी उसे खासकर माँ तो बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो काफी ट्रेडिशन फॉलो करने वाली औरत थी। थोड़ी देर बाद वे दो गाड़ियों में सवार होकर रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अनंत ने अपना गला ठीक करते हुए उस आदमी से पूछा, क्या इतनी सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस खुल जाता है? तो उनमें से एक आदमी ने गुस्से में कहा, अगर ऑफिस नहीं खुलेगा तो हम उसके घर चले जाएंगे, पर आज तो इस लड़की की शादी करवा कर रहेंगे, और हमें यकीन है ये शादी के वक्त इनकार कर देगी, उसके बाद हम इसे अपने बॉस के पास ले जाएंगे। सुनकर अनंत ने उस लड़की की तरफ देखा। अनंत और वो लड़की दोनों पीछे की तरफ बैठे थे, और वो और सामने एक आदमी ड्राइव कर रहा था और एक पैसेंजर सीट पर बैठा था, और उनमें से जो तीसरा आदमी था वो फिलहाल वेदांत के साथ दूसरी गाड़ी में था। वेदांत मज़े से उस आदमी के साथ गप्पे लड़ा रहा था, जबकि उसे पता नहीं था कि वो मुंबई का एक मावली था। उसके बालों को देखते हुए कहा, भाई ये हेयर स्टाइल अच्छा है ना, सुबह सुबह बनाने की झंझट और ना ही हेयर केयर करने की। उस आदमी के सर पर बहुत ही छोटे बाल थे, शायद उसने हाल फिलहाल में अपना सर मुंडवाया था। वेदांत जब सुबह ऑफिस आता है तो उसे बाल बनाते वक्त बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसके बाल स्मूथ होने के साथ साथ थोड़े घुंघराले से भी हैं, जो जल्दी से सेट नहीं होते हैं, और इसी चक्कर में उसे एक्स्ट्रा 5 मिनट लग जाते हैं। और वेदांत टाइम का इतना पक्का आदमी है कि उसे वो 5 मिनट भी हमेशा ज्यादा ही लगते हैं, इसीलिए उसका ध्यान उस आदमी के सर पर गया था। वहीं वो आदमी चुपचाप वेदांत की बातें सुन रहा था, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे परेशान होते हुए वेदांत ने भी कुछ देर बाद बोलना बंद कर दिया और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अनाही एक स्टूल पर चढ़कर हॉल की डेकोरेशन कर रही थी। उसके पास ही रूहान हाथों में थाली लिए खड़ा था, जिसमें फूलों की माला थी, जिन्हें अनाही रेलिंग पर लगा रही थी। अचानक ही अनाही का पैर फिसलने को हुआ तो रूहान ने जल्दी से उसकी कमर थाम ली। उसके हाथ से फूलों की थाली नीचे छूटकर गिर चुकी थी, इसलिए हॉल में बाकी काम करने वाले लोगों की नज़रें भी उन दोनों पर आकर टिक गईं। रूहान और अनाही शिद्दत से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रूहान ने फिर घबराए हुई आवाज़ में कहा, मैडम जी आप ठीक तो है ना, चलिए नीचे उतारिए, मैंने पहले ही कहा था ये सब काम मैं कर लेता हूँ, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम का हाथ पैर टूट जाएगा। इतना बोलकर उसने अनाही को एफर्टलेसली उठाकर नीचे खड़ा कर दिया, जैसे वो कोई फोम की गुड़िया हो। अनाही को इतना ही वजन महसूस हुआ था। वहीं अनाही ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुकाकर कहा, आई एम रियली सॉरी, आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। इतना बोलकर उसने अपने चेहरे पर आते बालों को अपने कान के पीछे किया। वहीं उसके इस हरकत को देखकर रूहान ने चारों तरफ देखा तो सब लोग उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। रूहान ने फिर वो माला टांगते हुए कहा, क्या किसी के पास काम नहीं है जो इधर देख रहे हो? रूहान की आवाज़ सुनकर बाकी सब फिर से अपने काम में लग गए, और वो फिर उस स्टूल से नीचे उतर कर अनाही के करीब बढ़ा और उसके बालों में लगी फूलों की पंखुड़ियों को उतारते हुए धीरे से बोला, मैडम जी आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज्यादा ही शर्माने लगी हैं, जबकि मैंने तो इस तरीके से आपको छुआ भी नहीं था। अनाही ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आपने मेरी कमर को पकड़ा था, आपको पता भी है लड़कियों की कमर कितनी सेंसिटिव होती है, उस पर ऐसे हाथ लगता है तो अजीब सा लगता है, आपको नहीं पता है, आपको समझ ही नहीं आएगा। रूहान ने सर को हिलाते हुए कहा, सीरियसली? अनाही ने एक नज़र हॉल को देखा जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, फिर उसने रूहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। रूहान ने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप मुझे कौन सा प्रैक्टिकल दिखाने वाली है? अनाही ने आई थिंक करते हुए कहा, किसी सेंसिटिव पार्ट पर हाथ रखा जाता है तो कैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल यही प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ मैं आपको, अब चलिए आप मेरे साथ। रूहान का दिमाग अल्ट्रा प्रो लेवल डर्टी वे में काम कर रहा था, उसकी सांसें चढ़ चुकी थीं। ये सुनकर कि अनाही उसके सेंसिटिव पार्ट को छूने वाली है, जबकि अनाही का वो मतलब बिल्कुल नहीं था, रूहान का दिल फुल स्पीड से धड़क रहा था। वो हकलाते हुए बोला, आप सीरियस हैं? अनाही ने मोड़ते हुए धीरे से कहा, आई एम डम सीरियस, आप ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। थोड़ी देर बाद अनाही और रूहान दोनों अपने कमरे में थे। अनाही ने रूहान की शर्ट के बटन ओपन करते हुए उसके करीब बढ़कर कहा, अभी देखना, आपको 440 वाट का झटका ना लगा तो मुझे भी बोलना, फिर आप भी शर्माएंगे जैसे मैं शर्मा रही थी। रूहान ने अपने गले को तर करते हुए हकलाते हुए कहा, प्लीज एक बार और सोच लीजिए, क्या आप सच में सीरियस हैं? अनाही ने उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचा, और इतना करीब कि उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। अनाही उसकी आंखों में शिद्दत से देखते हुए बोली, ये सब ना आपको मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, अब आप ही सोचो, मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, आज तक मैंने किसी लड़के से बात भी नहीं की, अब जवानी की आग मुझ में कूट कूट कर भरी है, अब कोई पसंद आएगा तो बेचारे का जलना तो तय है। कहते हैं जो इमोशन हम ज्यादा दिनों तक छुपा कर रखते हैं वो अगर बाहर आए तो हमेशा एक्सट्रीम लेवल पर आता है, तो ये एक साइंटिफिक चीज है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर आपको मेरे इस बर्ताव से परेशानी है तो आप मुझे छोड़, नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो मैंने अग्रीमेंट मनवा लिया है, मैं स्मार्ट हूँ, आई थिंक मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। इतना बोलकर उसने रूहान की शर्ट का तीसरा बटन भी खोल दिया, जिसके साथ ही रूहान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे से खुद से दूर करके कहा, मुझे नहीं लगता है अभी हमें ये सब करना चाहिए, थोड़ी देर बाद अनंत भाई आने वाले हैं तो हमें नीचे हॉल में जाना पड़ेगा, सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। अनाही ने एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, आप क्या सोच रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ? रूहान ने अपने होठों को काटते हुए एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नहीं पता आप क्या कर रही हैं, पर जो भी कर रही हैं उसके लिए ये वक्त बिल्कुल सही नहीं है।
अनाही का मन कर रहा था रूहान को एक खींच के थप्पड़ मारे और उसे बताए कि अगर सामने से उसकी पत्नी उसे छूना चाहती है तो उसे रोकना नहीं है। फिर उसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, जिसके साथ ही रूहान ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली।